हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 17 श्लोक नंबर 1 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु अर्गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गे नया कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममालम् प्रेम उमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न परा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य आनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अध्याय 17 जिसका शीर्षक है हिरण्याक्ष की दिग्विजय। जैसा कि हमने पढ़ा कि सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास आकर ये कहने लगे कि सारे संसार में अंधकार हो गया है, अपशकुन ही अपशकुन दिख रहे हैं, हम अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है। फिर ब्रह्मा जी ने उनको कश्यप मुनि और अदिति के विषय में बताया और कश्यप मुनि और दिति के विषय में कि किस प्रकार उन्होंने संध्या के समय संभोग करके असुर बालक को गर्भधान किया और उसके उपरांत जय और विजय के श्राप के विषय में पढ़ा। जब ये सब देवताओं ने सुन लिया तो उसके बाद की कथा हम यहाँ पर मैत्रेय मुनि के शब्दों में श्रवण करेंगे। श्लोक नंबर 1 मैत्रेय उवाच निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शंकयोच्छिता ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकस मैत्रेय उवाच निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शंकयोच्छिता ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकस। निशम्य का मतलब है सुनकर। मैत्रेय मुनि बता रहे हैं जब सुना क्या किसके द्वारा, आत्मभुआ। आत्मभुआ ब्रह्मा जी को कहते हैं जो कि भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए। इसके लिए गीतम यानी कि उनके शब्दों को या उनकी व्याख्या को जब देवताओं ने सुना, कारणम शंकयो जिता। कारण मतलब कारण, इन सब जो अपशकुन हो रहे थे उनका कारण, शंकयो यानी भय से उज्जिता अर्थात मुक्त हो गए। अब उनको पता चल गया कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा था, सब भगवान की इच्छा से हो रहा था, तो उनका भय समाप्त हो गया। ततः सर्वे न्यवर्तन्त। ततः तब सर्वे यानी सभी न्यवर्तन्त लौट गए त्रिदिवा, त्रिदिवाय अर्थात कहाँ पर, स्वर्गलोक में। देवाओं का सा जितने भी देवतागण थे जो स्वर्गलोक के निवासी थे, उन्होंने जब कारण सुना तो भय समाप्त हो गया और अपने अपने लोक यानी स्वर्गलोक में चले गए। अनुवाद, श्री मैत्रेय ने कहा, विष्णु से उत्पन्न ब्रह्मा ने जब अंधकार का कारण कह सुनाया तो स्वर्ग लोक के निवासी देवता समस्त भय से मुक्त हो गए और इस प्रकार वे सभी अपने अपने लोकों को वापस चले गए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, स्वर्ग लोक के निवासी देवता भी ब्रह्मांड के अंधकार ग्रस्त होने जैसी घटनाओं से अत्यंत भयभीत होते हैं, अतः वे ब्रह्मा के पास परामर्श हेतु गए। इससे यह संकेत मिलता है कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा भय से ग्रस्त है। इस संसार में चार मुख्य कार्यकलाप हैं, आहार निद्रा, भय तथा मैथुन। देवताओं में भी भय तत्व विद्यमान रहता है। प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक में, जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा लोक सम्मिलित हैं, और इस पृथ्वी लोक में भी पशु जीवन के जैसी ही सिद्धांत पाए जाते हैं। अन्यथा देवता अंधकार से इतना भयभीत क्यों होते? देवताओं तथा सामान्य जनों में यही अंतर होता है कि देवता अधिकारी के पास जाते हैं, जबकि इस पृथ्वी पर रहने वाले सामान्य जीव अधिकारी का अनादर करते हैं। यदि लोग अधिकारी के पास पहुंच सकें तो इस ब्रह्मांड की प्रत्येक प्रतिकूल अवस्था सुधर जाए। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में विचलित हुआ था, किंतु वह अधिकारी अर्थात श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उसकी समस्या हल हो गई। इस घटना से यही उपदेश मिलता है कि हो सकता है कि हम किसी भौतिक परिस्थिति में विचलित हों, किंतु यदि हम ऐसे अधिकारी के पास पहुंच सकें जो समस्या की वास्तव में व्याख्या कर सके, तो हमारी समस्या हल हो जाती है। देवता उत्पात का अर्थ जानने के लिए ब्रह्मा के पास गए और उनसे सुनने के बाद वे संतुष्ट होकर अपने अपने धाम शांतिपूर्वक वापस चले गए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी दो मुख्य बातें बताते हैं। एक तो ये कि चाहे हम किसी भी लोक में चले जाएं, भय हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। स्वर्ग के देवता तो क्या, देवराज इंद्र भी बन जाए तो भी सदैव ये भय रहता है कि कहीं मुझसे ये इंद्र आसन छीन न लिया जाए। तो भय का होना तो स्वाभाविक है, परंतु जो बुद्धिमान है वो अपने भय को लेकर एक अधिकारी व्यक्ति के पास जाते हैं, जो ना केवल इस भय का कारण बताता है अपितु भय से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय भी बताता है। संसार के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो हर प्रॉब्लम को लेकर किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनते नहीं हैं जो कि उन्हें वास्तव में इस प्रॉब्लम्स को दूर करने का उपाय बताए। लेकिन देवताओं के ऊपर जब संकट पड़ता है तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान के पास या भगवान की भक्ति या भगवान के सुंदर आदेश के द्वारा उनके भय को समाप्त कर लेते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में भी यदि कोई कभी भी कोई संकट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आए तो हमें भी भगवान के शुद्ध भक्त के पास जाना चाहिए, जो ब्रह्मा जी की तरह वास्तव में जो भगवान के शब्द हैं, जो भगवान के शास्त्र हैं, जो भगवान के आदेश हैं उनको जानता है। और जब हम किसी ऐसे अधिकारी के पास पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भी भय समाप्त हो जाएगा और हम भी आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, दीतिस्तु भर्तुरादिशा आदपत्य परिशंकिनी पूर्णे वर्ष शते साध्वी पुत्रो प्रसु शुभ यमो। दितिस्तु भर्तुरादिशात् अपत्य परिशंकिनी पूर्णे वर्ष शते साध्वी पुत्रो प्रसु शुवे यमो। दितिस्तु, तू कहते हैं लेकिन को, देवताओं को तो आनंद आ गया, लेकिन दिति भर्तुर आदेशात, भर्तु यानी अपने पति के आदेशात यानी आज्ञा से, अपत्य अपने बच्चों से, परिशंकिनी शंकालु, वो बहुत शंकित थी कि मेरे बेटे आएंगे तो कितना उत्पात करेंगे, क्योंकि उनके भर्तु ने यही आदेश किया था। फिर पूर्णे वर्ष शते साध्वी, पूर्णे यानी पूरे किए, कितने वर्ष शते, 100 वर्ष तक उस गर्भ में स्थित शिशुओं को वो गर्भ में धारण करे रखी। साध्वी यानी वो पतिव्रता स्त्री थी। पुत्रो यानी दो पुत्र, प्रसुषुवे यानी जन्म दिया, यमो यानी जुड़वा, जुड़वा दो पुत्रों को 100 वर्षों के गर्भ धारण के उपरांत उसने जन्म दिया। अनुवाद, साध्वी दिति अपने गर्भ में स्थित संतानों से देवों के प्रति उपद्रव किए जाने के लिए अत्यधिक शंकालु थी और उसके पति ने भी यही भविष्यवाणी की थी, अतः उसने 100 वर्ष के गर्भकाल के पश्चात जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। मैत्रेय मुनि कहते हैं, जैसे ही उन दो जुड़वा असुरों का जन्म हुआ तो क्या हुआ, उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर जायमानयो देवी भुव्यंतरिक्षे च लोकस्योरुभयावह उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर जायमानयो देवी भुव्यंतरिक्षे च लोकस्यो रुभयावह। उत्पाता अर्थात प्राकृतिक उत्पात या उपद्रव, बहवः यानी अनेक, तत्र वहाँ, निपेतु घटित हुए, जायमानयो उनके जन्म के समय, जैसे ही जन्म हुआ तो उत्पात खड़े हो गए बहुत सारे, और कहाँ, देवी अर्थात स्वर्ग लोक में, भूवी अर्थात पृथ्वी लोक पर, अंतरिक्ष अर्थात ब्रह्मा बाह्य आकाश में, च तथा लोकस्योरुभया, लोकस्य यानी संसार का, उरु यानी अत्यधिक, भयावह भय उत्पन्न करने वाला, भयानक। अनुवाद, दोनों असुरों के जन्म के समय स्वर्गलोक पृथ्वीलोक तथा इन दोनों के मध्य के लोकों में अनेक प्राकृतिक उत्पात उपद्रव हुए, जो अत्यंत भयावने एवं विस्मयपूर्ण थे। क्या उपद्रव होने लगे मैत्रेय मुनि बताते हैं। सहा चला भुवश्चेलो दिशः सर्वा प्रजज्वलो सोल्काश्चा शनयः पेतु केतवश्चार्ति हेतव। सहा चला, सह अर्थात के साथ साथ, अचला यानी पर्वत, भूव यानी पृथ्वी के, चेलू यानी हिल उठी, यानी पृथ्वी जो है वो पर्वतों के साथ हिलने लगी, कांपने लगी। दिशा सर्वा प्रजज्वलु, दिशा मना दिशाएं, सर्वा यानी समस्त, प्रजज्वलु यानी अग्नि के समान धधक उठी, पृथ्वी कांपने लगी, सारी दिशाएं धधकने लगी। सोल्काश्च शनयः पेतु, स यानी सात, उल्का अर्थात उल्का पिंड, च तथा शनया यानी वज्र, पेतु यानी गिर पड़े, और केतवश्चार्ति हेतव, केतव यानी पुच्छल तारे, जो दुमदार तारे होते हैं, च तथा आरती हेतव अर्थात समस्त अशुभ काल का कारण। अनुवाद, पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सर्वत्र अग्नि ही अग्नि धधक रही हो। उल्काओं, पुच्छल तारों तथा वज्रों के साथ साथ शनि जैसे अनेक अशुभ ग्रह दिखाई देने लगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब किसी लोक में प्राकृतिक उत्पात होने लगे तो यह समझना चाहिए कि किसी असुर ने जन्म लिया है। वर्तमान युग में आसुरी लोगों की संख्या बढ़ रही है, फलतः प्राकृतिक उत्पातों में भी वृद्धि हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि भागवतम के कथन से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो प्राकृतिक उत्पात होते हैं अर्थात नेचुरली जो कष्ट हमको भोगने पड़ते हैं ना, उसका कारण क्या है जानते हो? उसका कारण है असुरों का जन्म। और असुरों के जन्म का कारण क्या है, जो हम पहले पढ़ चुके, गलत रीति से गर्भधान करना अर्थात ग्रस्त जीवन का भ्रष्टाचार होना। और जब ग्रस्त जीवन भ्रष्ट हो जाता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है ब्रह्मचर्य अवस्था में सही शिक्षा का ना होना। वास्तव में भक्तों, हमारा जो भी कष्ट, जो भी संकट, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसका कारण यही होता है कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन का सफ़र अच्छे से स्टार्ट नहीं करते हैं। जब सारे वर्ण आश्रम अपने कर्मों को सही ढंग से विधि विधानों से करेंगे तो प्रकृति हमारे अनुकूल हो जाएगी। आज प्रकृति हमारे प्रतिकूल है क्योंकि हम ना शास्त्र का ना ही किसी रूल्स एंड रेगुलेशन का सम्मान करते हैं। उसी के कारण आज जो भी दुख भोग रहे हैं हमारे अपने ही कर्मों का कारण है। आगे आगे कहते हैं मैत्रेय मुनि, वायु सुदुस्पर्श फुत्कारा निरयन मुहु उन्मूलयन नगपतीन उन्मूलयन नगपतीन वात्यानि को रजो ध्वज। ववौ वायु सुदुस्पर्श, ववौ यानी बहने लगी, वायु मतलब हवाएं, सुदुस्पर्श अर्थात छूने में बुरी लगने लगी, यानी जो हवाएं थी वो बहुत ही कठिन और बहुत ही गरम गरम हवाएं थीं। और फूतकारानी, साएं साएं का शब्द, मतलब इतना शब्द करके वो उड़ रही थी। ईरयन निकालती हुई, मुहु यानी पुनः पुनः, उन्मूलयन उखाड़ती हुई, नगपतिन यानी विशाल वृक्षों को, बड़े बड़े वृक्ष उन वायुओं की तरह उखड़ जाते थे, के कारण उखड़ जाते थे। और वात्या यानी अंधड़, अनीक यानी सेनाएं, रजध्वज यानी धूल, ध्वज यानी झंडे पताकाएं। अनुवाद, बारंबार साएं साएं करती तथा विशाल वृक्षों को उड़ाती हुई अत्यंत दुस्सह ये स्पर्श हवाएं बहने लगी। उस समय उदंड उनकी सेनाएं और धूल के मेघ उनकी ध्वजाएं लग रहे थे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते, जब उदंड चले, अत्यधिक गर्मी या हिमपात हो और तूफानी हवाओं से वृक्ष उखड़ जाएं, तो यह समझना चाहिए कि आसुरी जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण ये प्राकृतिक उत्पात हो रहे हैं। आज भी इस विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जहाँ ये सभी उत्पात हो रहे हैं। यह सारे संसार में सत्य है। वहाँ पर्याप्त धूप नहीं रहती, आकाश सदैव बादलों से गिरा रहता है, बर्फ गिरती है और कड़ाके की सर्दी पड़ती है। इनसे इसकी पुष्टि होती है कि ऐसे स्थानों में उन आसुरी लोगों के निवास हैं जो सभी प्रकार के वर्जित पापमय कार्य करने के आदि हो गए हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी पुनः याद करा रहे हैं कि आज जिन कंट्रीज में ऐसे उत्पात हो रहे हैं, उनका कारण असुरों का जन्म ही है। आगे कहते हैं मैत्रेय मुनि, उद्धसत्तडिदम्बोद घटया नष्ट भागणे व्योमनी प्रविष्ट तमसा नस्म व्यादृश्यते पदम। उदसत अर्थात जोर जोर से हंसकर, तड़ित अर्थात बिजली, अम्बोद यानी बादलों के, घटया यानी समूह, नष्ट भागणे, नष्ट यानी विनष्ट, भागणे यानी नक्षत्र, व्योमनी प्रविष्ट तमसा, व्योमनी यानी आकाश में, प्रविष्ट घिरा हुआ, तमसा यानी अंधकार, न स्म न मतलब नहीं, स्म व्यादृश्यते अर्थात दिखता था, पदम अर्थात कोई भी स्थान। अनुवाद, आकाश के नक्षत्रों को मेघों की घटाओं ने घेर लिया और उनमें कभी कभी बिजली चमक जाती तो लगता मानो जोर जोर से हंस रही हो। चारों ओर अंधकार का राज्य था और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। चुक्रोश विमनावाधिर उदूर्मी क्षुभितोदर सोदपानाश्च सरितर चुक्षुभु शुष्क पंकजा। श्लोक नंबर 7 में मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, चक्रोश विमनावार्थे उधुर्मी क्षुभितोदर सोदपानाश्च सरितर चुक्षुभु शुष्क पंकजा। चक्रुष अर्थात जोर जोर से विलाप करने लगा, विमना अर्थात दुखी होकर, वाधिर यानी समुद्र, ऊर्ध्वमी यानी ऊंची ऊंची लहरें, समुद्र ऊंची ऊंची लहरें लगाकर जब वो विक्षुब्ध हो रहा था, क्षुभिता मतलब विक्षुब्ध हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे दुखी होकर जोर जोर से विलाप कर रहा हूँ। और उदर भीतर के प्राणी, स उदपाना यानी जलाशयों तथा कुओं के पिए जल सहित, च तथा सरितश अर्थात नदियाँ, चक्षुभू शुष्क पंकजा यानी क्षुब्ध हुए, शुष्क यानी सूखे हुए, पंकजा यानी पुष्प, नदियों में जो खिलते हुए कमल होते हैं वो सारे मुरझा गए। शुष्क पंकजा। अनुवाद देखिए, उत्त ताल तरंगों से युक्त सागर मानो शोक में जोर जोर से विलाप कर रहा था और उसमें रहने वाले प्राणियों में हलचल मची थी। नदियां तथा सरोवर भी विक्षुब्ध हो उठे और कमल मुरझा गए। मुहु परि धयो भूफन सराहवो शशि सूर्ययो निर्दाता रथ निर्हाता विवरेभ्य प्रजघ्यरे। मुहु परिदया, मुहु कहते हैं पुनः पुनः, परिदया अर्थात कुहरे से युक्त मंडल अभुवन यानी प्रकट हुआ। सराहवो यानी ग्रहणों के समय शशि सूर्ययो, शशि यानी चंद्रमा, सूर्ययो अर्थात सूर्य, निर्दाता रथ निर्हादा, निर्दाता अर्थात गर्जन, रथ निर्हादा अर्थात घर घर करते रथों का सा शब्द, विवरेभ्य यानी पर्वत की गुफाओं से प्रजगिरे अर्थात उत्पन्न हो रहा था। अनुवाद, सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर ग्रहण लगने के समय अमंगल सूचक मंडल बार बार दिखाई पड़ने लगा। बिना बादलों के ही गरजने की ध्वनि और पर्वत की गुफाओं से रथों जैसी गरगराहट सुनाई पड़ने लगी। अंतरग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो विहिनिमुल्बणम् श्रीगालोलूकटंकारे प्रणयदुर शिवम शिवा। अंतर ग्रामेशु मुखतो, अंतर मतलब बाहर, ग्रामेशु मतलब गांवों में, मुखतः मना उनके मुखों से, वमंत्यो अर्थात उगलते हुए, वहिनम अर्थात अग्नि, उल्बणम अर्थात भयावनी और श्रीगालो लूकटंकार है। श्रीगाल अर्थात सियार, उल्लूक अर्थात उल्लू, टंकारे अर्थात चीख से, प्रणोधु अर्थात उत्पन्न, शिवम शिवा, अशिवम, शिवम का मतलब है, शिव का मतलब होता है शुभ और यहाँ पर लिखा हुआ है प्राणादुर अशिवम शिवा। अशिवम मतलब अशुभ, अमंगल सूचक, शिवा यानी सियारी, सियारने। अनुवाद, गांव के भीतर सियार ने अपने मुखों से दहकती आग उगलती हुई अमंगल सूचक शब्द करने लगी। इस रोने में सियार तथा उल्लू भी साथ हो लिए।
संगीतवत् रोदनवत् उन्नमय्य शिरोधराम व्यमुंच व्यमुंचन विविधा वाचो ग्राम सिंहस्त तत्तत। संगीतवत् रोदनवत्, संगीतवत् मनो गा रहे हैं, रोदनवत् मनो रोने के समान, और उन्मय यानी उठाकर, शिरोधराम यानी गर्दन को ऊपर उठा उठा कर, व्यूमुंचन निकालते हुए, विविधा नाना प्रकार की, वाचा यानी चीतकार, ग्राम सिंह अर्थात कुत्ते, ततस्तथा यानी जहाँ तहाँ। अनुवाद, जहाँ तहाँ कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठा उठा कर शब्द करने लगे, मानो कभी वे गा रहे हों और कभी विलाप कर रहे हों।
खराश कर्कशक्षत खुरैर्धन्नन्तो धरातलम् खार्काररम्भरभसामत्ता पर्यदावन्वरुत्यश। खराश्च कर्कशय, खरा यानी गद्दे, च मन तथा, कर्कशय यानी कटु, क्षत्त हे विदुर, हे विदुर जी जो गदे हैं वो बहुत ही कर्कश आवाज में, कटु आवाज में चीख रहे हैं। खराय यानी अपने खुरों से खरय धनंत अर्थात मारते हुए धरातलम पृथ्वी पर जोर जोर से अपने खुरों को मारते हुए और खारकार रभसामत्ता खारकार अर्थात रेंकते हुए जोर जोर से गदा जैसे रेंकता है ना आवाज़ें निकालता है रंबसा बुरी तरह से संलग्न मत्ता अर्थात प्रमत या पागल पर्यदावन वरुथश पर्यदावन यानी इधर उधर दौड़ने लगे वरुथश अर्थात झुंडों में हे विदुर झुंडों के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी पर प्रहार करते हुए जोर जोर से रेंगते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं गधों की जाति जब भी अपने को अत्यंत आदरणीय समझती है तब वह इधर उधर झुंडों में दौड़ने लगते हैं तो मानो समाज के लिए यह अपशुकन माना जाता है। रुदंतो रास भद्रस्ता नीडा दूध पतन खगा गोशेरन रण्ये च पशव शक्रिन्मूत्रम कुर्वत रुदंतो यानी रोते हुए रासभत्रस्ता रासभ अर्थात गधों के द्वारा त्रस्ता अर्थात भयभीत नीडादुदपत पतन खगा नीडात यानी घोंसले से उदपतन यानी ऊपर उड़ने लगे खगा यानी पक्षी गोशेरण्ये च पशव घोषे यानी गौशाला में अरण्य यानी जंगल में च तथा पशव यानी पशु शक्रिन्मूत्रम अकुर्वत शकृत यानी मल मूत्रम यानी मूत्र अकुर्वत यानी त्याग दिया गधों के रेंगने से भयभीत होकर पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चीक चीक कर उड़ने लगे और गौशालाओं तथा जंगलों में पशु मलमूत्र त्यागने लगे। गावोत्र सन्न श्रीगदोहा तो यदा पूयवर्षिणी व्यरुदन्देवलिङ्गानि द्रुमापेतु विनानल नीलम गाव अर्थात गायें अत्र सन यानी भयभीत थी अश्रिक यानी रक्त दोहा यानी प्रदान किया इतनी भयभीत थी कि दूध की जगह थे रक्त जो है वो दोहने पर उतर रहा था और तो यदा यानी बादल पूय वर्षिणी पूय यानी पीप वर्षिण यानी वर्षा करते हुए बादलों से पानी नहीं बल्कि पीप बरस रहा था। व्यरुदन देवलिंगा व्यरुदन अर्थात अश्रुपात करते करने लगे देवलिंगानी अर्थात देवों के विग्रह द्रोमा पेतु विना द्रोमा अर्थात वृक्ष पेतु यानी गिर परे विना यानी कि अनुपस्थिति में अनिलम यानी हवा का झोंका आंधी यानी हवा नहीं लग रही थी फिर भी वृक्ष गिर रहे थे। अनुवाद भयभीत होने के कारण गौवें दूध के स्थान पर रक्त देने लगी बादलों से पीप बरसने लगा मंदिरों में देवों के विग्रहों से आंसू निकलने लगे और वृक्ष बिना आंधी के ही गिरने लगे। ग्रहण पुण्यतमानन्ये भगणा चापी दीपिता अतिचेरु वक्रगतया गत्या युयुदुश्च परस्परम् ग्रहान पुण्य ग्रहान यानी ग्रह या लोग पुण्यतमान यानी अत्यंत शुभ अन्य यानी अन्य क्रूर ग्रह भगणान अर्थात नक्षत्र या समूह च तथा अपि भी दीपिता यानी प्रकाशमान अतिचेरुर वक्रगत्या अतिचेरु यानी
अध्यारोपित वक्रगत्या यानी टेढ़ी मेढ़ी चाल, युयुधु परस्पर भिड़ गए च तथा परह परम एक दूसरे से। अनुवाद, मंगल तथा शनि जैसे क्रूर ग्रह बृहस्पति शुक्र तथा अनेक शुभ नक्षत्रों को लांघकर तेजी से चमकने लगे। टेढ़े मेरे रास्तों में घूमने के कारण ग्रहों में परस्पर टक्कर होने लगी। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यह ब्रह्मांड भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वश में रहकर घूम रहा है। सत्वगुणी जीवात्माएं पवित्र योनियां मानी जाती हैं, यथा पवित्र देश, पवित्र वृक्ष आदि। ग्रहों यानी लोकों के साथ भी ऐसा ही है। अनेक ग्रह शुभ माने जाते हैं और अन्य ग्रह अशुभ। शनि तथा मंगल अशुभ सूचक हैं। जब पवित्र ग्रह बहुत तेजी से चमकते हैं तो यह शुभ सूचक होता है, किंतु जब अशुभ ग्रह तेजी से चमकते हैं तो यह शुभ सूचक नहीं माना जाता। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ विदुर जी मैत्रेय मुनि को बता रहे हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी से बता रहे हैं कि जब हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यपु गर्भ में आए हैं तो उनके आने से ही इतने अपशगुन हो रहे हैं, इतने अपशगुन हो रहे हैं कि सारे जगहों पर अमंगल ही अमंगल सा छा गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।